आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी को न्याय सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री ने बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। ट्रेन खजुराहो को काशी सहित देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों से जोड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित किया। और प्रदेश में नवंबर माह में रिकॉर्ड ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब सभी को न्याय मिले, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कल शाम नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सभी को न्याय सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने लोक अदालतों और मुकदमा पूर्व समझौतों के माध्यम से लाखों विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली के तहत केवल 3 वर्षों में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस रेलवे स्टेशन से बनारस खजुराहो सहित 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बनारस खजुराहो सहित देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन खजुराहो को काशी सहित देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों से जोड़ेगी। इधर खजुराहो पहुंचने पर सांसद विष्णु शर्मा ने यात्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के चलने से अब पर्यटन नगरी खजुराहो के व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी होगी। वाराणसी आने वाला पर्यटक अब सीधा खजुराहो पहुंच सकेगा। 4 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों के शुभारंभ के साथ देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस पर प्रस्तुत है एक जानकारी।
गाड़ी संख्या 26506 बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:10 पर बनारस से रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर खजुराहो पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 26505 खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 3:20 पर खजुराहो से प्रस्थान करेगी और रात 11:15 पर बनारस पहुंचेगी। गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली ये ट्रेन अपने मार्ग में जिन प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी उनमें वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट धाम, करवी, बांदा और महोबा का नाम शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए देहरादून जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा एक जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जनजाति गौरव दिवस आदि संस्कृति के वैभव के गुणगान और प्रतिभा सम्मान का अवसर है। उन्होंने कलेक्टरों को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस को सम्मान पूर्वक पूरी गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य जिलों और विकासखंडों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखलाओं का आयोजन शुरू किया जाए। वर्ष 2021 से जनजाति समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने और आदि संस्कृति के वैभव का आयुषगान करने के लिए जनजाति गौरव दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश से की थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। उज्जैन में 1 से 30 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन इसमें गीता पाठ और प्रदर्शनी सहित सांगीतिक प्रस्तुतियां होंगी। दूसरे दिन काव्य पाठ और सांगीतिक प्रस्तुति और तीसरे दिन बेंगलोर एवं भोपाल के संगीत दल की प्रस्तुतियां होंगी। गीता महोत्सव में ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कृत प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता में 21 लाख नागरिकों की विशाल भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता में अधिकाधिक भागीदारी के प्रयास किए जाएं। गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रदेश में गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 7 से 25 नवंबर की अवधि में ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना वर्ष में इस स्पर्धा में 70 पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। आज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में जीएसटी की नई दरों से नागरिकों को किस प्रकार से लाभ हो रहा है।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत कई हस्तशिल्प वस्तुओं पर करों में कटौती की गई है, जिससे कारीगरों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इन सुधारों के तहत लकड़ी, पत्थर और धातुओं से बनी मूर्तियों पर कर 12% घटाकर 5% कर दिया गया है। कर कटौती में पेंटिंग, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद और मिट्टी व टेराकोटा से बने बर्तन जैसी वस्तुएं शामिल हैं। यह कदम न केवल देश के कारीगरों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को भी बल दे रहा है। इसके अलावा कपास और जूट से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग पर कर 12% घटाकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों से उपभोक्ता भारतीय हस्तशिल्प को आसानी से खरीद पा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में देश के हस्तशिल्प वस्तुओं को पहुंच मिल रही है और प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ रही है। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने कल शाम राज्य सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें पन्ना के अजीत कुमार मिश्रा अव्वल आए हैं। 239 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल शाम नर्मदापुरम के पचमढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास के बाद श्री गांधी आज पचमढ़ी से रवाना होंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से नवंबर के पहले सप्ताह में ही कई जिले ठिठुरने लगे हैं। कई शहरों में रिकॉर्ड ठंड रही। इंदौर में पिछले 25 साल में नवंबर में इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी। वहीं भोपाल में पारा 8.4 डिग्री पर पहुंच गया। ये 10 साल में दूसरा सबसे कम तापमान है। पिछले साल पारा 8.2 डिग्री पर रह चुका है। ग्वालियर में 10.5 डिग्री, उज्जैन में 10.4 डिग्री और जबलपुर में पारा 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजगढ़ लगातार दूसरी रात प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 7.4 डिग्री और रीवा में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अब ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ेगा। फिलहाल देर रात और अल सुबह ठंड का असर ज्यादा है। वहीं सुबह हल्का कोहरा भी है, जो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज से न्याय के लिए दौड़ प्रत्येक कदम जागरूकता की ओर थीम पर न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह की शुरुआत मैराथन दौड़ से की जाएगी। मंदसौर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17वें कॉमन रिव्यू मिशन के अंतर्गत मंदसौर जिले का भ्रमण संपन्न हुआ। पन्ना में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आज से 14 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के तहत मैराथन दौड़ तथा बाइक रैली इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। डिंडौरी के ग्राम बरगांव जनपद पंचायत शैपुरा में आज विशाल दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और खंडवा में जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 29वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 11 नवंबर को गौरी कुंज सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।